सच कहूं तो मतलब जब हम किसी दुनिया को बचाने वाले नायक या किसी तारणहार के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है?
हाँ, एक बहुत ही ताकतवर इंसान की, है ना, जो बस आसमान से उतरे और अपनी जादुई ताकत से सारी बुराई को एक झटके में खत्म कर दे।
बिल्कुल, एकदम किसी सुपर हीरो की तरह।
आज के हमारे समाज में भी हम ताकत को हमेशा चमक, शोर और मतलब शारीरिक या आर्थिक दबदबे से ही जोड़कर देखते हैं।
एकदम सही बात है।
अगर कोई ताकतवर है तो उसका ताकतवर दिखना भी जरूरी माना जाता है, और ये मतलब ही हमारे इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
हाँ, वो जो शक्ति का दिखावा होता है ना।
जी बिल्कुल, हम शक्ति के दिखावे यानी उसके सौंदर्य शास्त्र के इतने आदि हो चुके हैं कि हमें लगता है कि जो चीज भव्य नहीं है वो प्रभावशाली हो ही नहीं सकती।
हम बस सुरक्षा जाते हैं और एक अजय योद्धा की छवि हमें वो सुरक्षा देती है।
लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो बचाने वाला व्यक्ति इस भव्य छवि के बिल्कुल उलट हो?
ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी धारणा को परखने वाले हैं। हम डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ट द्वारा यशाया यानी आइजया के किताब के अध्याय 52 और 53 पर दिए गए व्याख्यान पर चर्चा कर रहे हैं।
हाँ, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये स्रोत केवल पुराने समय की बात नहीं करता। ये दिखाता है कि कैसे जानकारी और शक्ति का दिखावा अक्सर असली सच्चाई को छिपा देता है।
बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ऐतिहासिक पाठ को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उद्धार यानी संकट से छुटकारे और ईश्वर की शक्ति के बारे में हमारी मानवीय उम्मीदें वास्तविकता से कितनी अलग होती हैं।
और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी अपने जीवन में सफलता और शक्ति की एक निश्चित छवि लेकर चलते हैं। हम उसी से तय करते हैं कि कौन महत्वपूर्ण है।
हाँ हाँ, और ये स्रोत सीधे तौर पे उस छवि को चुनौती देता है।
मतलब ये शक्ति, पीड़ा और जीत के अर्थ को पूरी तरह से पलट देता है।
एकदम, ये हमारे उन पैमानों को तोड़ देता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस मसीहा या बचाने वाले के बारे में बात करने से पहले हमें उस संकट को समझना होगा जिससे लोगों को बचाया जाना था।
जी, पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है।
श्रोत की शुरुआत बहुत ही परस्पर विरोधी, मतलब एकदम अलग अलग तस्वीरों से होती है। यरूशलेम और बेबीलोन के बीच का अंतर सच में दिमाग घुमा देने वाला है।
हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली तस्वीरें हैं। बेबीलोन, जो उस समय एक बहुत बड़ी महाशक्ति था जिसने असीमित अहंकार किया, उसे क्या आदेश मिलता है?
यही कि अपने ऊंचे सिंहासन से उतरो और धूल में जाके बैठ जाओ।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ यरूशलेम है जो पहले से ही हार कर धूल में पड़ा है। उसे कहा जाता है कि अपनी धूल झाड़ो, उठो और सिंहासन पर बैठो।
मतलब एकदम अचानक से सत्ता पलट गई।
हाँ, और ये पूरी किताब का एक मुख्य विषय भी है कि अहंकार अंततः आपको जमीन पर लापटकता है और अपनी कमजोरी को मानकर ईश्वर पर विश्वास करना आपको ऊपर उठाता है।
ये बहुत गहरी बात है। और डॉक्टर ऑसवाल्ट यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि ईश्वर ने अपनी प्रजा को बिना किसी पैसे के बिकने दिया।
हाँ, कोई आधिकारिक तलाक या सौदा नहीं हुआ था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्हें वापस लाने की बारी आएगी तो कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।
एकदम सटीक विश्लेषण। इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। ईश्वर किसी भी बाहरी ताकत का कर्जदार नहीं है, वो उन्हें बिना किसी कीमत के वापस ला सकता है।
अरे वाह, इसी बात को समझाने के लिए श्रोत में एक बहुत ही सजीव दृश्य उकेरा गया है, एक घिरे हुए शहर का दृश्य
जहाँ लोग भुखमरी और डर में जी रहे हैं।
हाँ, जरा कल्पना कीजिए, शहर की दीवार पर एक पहरेदार खड़ा है और वो दूर पहाड़ों पर देख रहा है। अचानक उसे एक दूत दौड़ता हुआ दिखाई देता है।
जी, एक संदेशवाहक।
और वो पहरेदार कहता है कि उस दूत के पैर कितने सुंदर हैं। अब जो इंसान पहाड़ों से दौड़कर आ रहा है उसके पैर देखने में सुंदर कैसे हो सकते हैं? वो तो खून और धूल से सने होंगे।
बिल्कुल, शारीरिक रूप से वे पैर सुंदर नहीं हो सकते,
लेकिन वे सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वे जीत की खबर ला रहे हैं। स्रोत में इसे शालोम या इवेंजल कहा गया है। ये बहुत है, भारी शब्द है ना?
बहुत ज्यादा। शालोम का मतलब सिर्फ लड़ाई का रुकना नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ वापस अपनी सही जगह पर आ जाना, पूर्णता। और इवेंजल का अर्थ है ऐसी खुशखबरी जो वास्तविकता को ही बदल दे।
मतलब वो पहरेदार उस उम्मीद की सुंदरता की बात कर रहा है। ये मुझे उस मैराथन धावक के उदाहरण की याद दिलाता है
जो स्रोत में है।
हाँ, यूनानी सेना वाला किस्सा।
बिल्कुल, हम अक्सर सुनते हैं कि उस धावक ने एथेंस तक जीत की खबर पहुंचाने के लिए 26 मील दौड़ लगाई और फिर वो गिर के मर गया।
लेकिन डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसमें एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक तथ्य जोड़ते हैं।
हाँ, और वो तथ्य सच में हैरान करने वाला था।
वो धावक असल में उस 26 मील की दौड़ से ठीक एक दिन पहले 52 मील और दौड़ा था मदद मांगने के लिए।
बाप रे, मतलब वो इंसान बिना हुके बस भाग ही रहा था। जी, ये उस दूत के समर्पण को दिखाता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक वो उम्मीद की खबर लेकर आ रहा है।
ये बहुत ही प्रेरणादायक है, लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है, मतलब एक दिलचस्प सवाल है जो श्रोत को पढ़ते हुए दिमाग में आता है।
हाँ, बताइए।
अगर वो दूत आ गया है और ये स्पष्ट है कि शहर के लोग एकदम असहाय हैं, वो खुद को नहीं बचा सकते और मसीहा खुद उन तक आ रहा है, तो फिर श्लोक 52:11 में लोगों को बाहर जाने के लिए क्यों कहा गया है? मतलब अगर बचाने वाला सब कुछ कर ही रहा है तो लोगों को अपने पुराने रास्ते छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है?
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्मवैज्ञानिक सवाल है। डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसे उद्धार के तालमेल या अंग्रेजी में सिनर्जी ऑफ सॉल्वेशन कहते हैं।
अच्छा, तालमेल।
हाँ, ईश्वर पहल करता है, ये सच है, लेकिन बचाने की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि किसी बेजान चीज पर थोप दी जाए। मनुष्य को अपने पापों को छोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है।
मतलब आपको अपनी मर्जी से उस उद्धार को चुनना होगा।
बिल्कुल।
और स्रोत ये भी बताता है कि जब वे बाहर निकलते हैं तो ईश्वर आगे से और पीछे से दोनों तरफ से उनकी रक्षा करता है।
सुरक्षित भी हैं, लेकिन पहला कदम उठाना होगा।
चलिए, अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दूत आ गया, लोग तैयार है, अब हर कोई उस महान मसीहा का इंतजार कर रहा है।
और हमारी उम्मीद क्या होती है? कि वो कोई बहुत ही आकर्षक बलवान योद्धा होगा।
हाँ, लेकिन अध्याय 53 की शुरुआत में कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। तकनीकी रूप से असली कविता 52:13 से शुरू होती है और ये बहुत सोच समझकर बनाई गई है ना?
जी, ये तीन तीन श्लोकों के 5 खंडों या स्टैंजा में लिखी गई है। और ये संरचना बहुत कुछ कहती है। ये कविता सीधे दुख से शुरू नहीं होती, बल्कि जीत और महिमा से शुरू और खत्म होती है।
मतलब पहले से ही बता दिया गया है कि अंत में जीत उसी की होगी।
बिल्कुल, सेवक ऊंचा उठाया जाएगा। डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसकी तुलना फिलिपियों की किताब से करते हैं, जहाँ सेवक ने अपनी महिमा स्वेच्छा से त्याग दी,
क्योंकि उसे पता था कि कहानी का अंत क्या होने वाला है। अगर आपको पता है कि जीत पक्की है तो आप कोई भी अपमान सह सकते हैं।
एकदम सही। लेकिन उस सेवक का जो शारीरिक रूप बताया गया है वो बहुत चौंकाने वाला है।
सच में, स्रोत कहता है सूखी जमीन में एक कमजोर जड़, मतलब कोई 27 इंच बाइसेप्स वाला इनक्रेडिबल हल्क नहीं था।
हाँ बिल्कुल, एक दुबला पतला कमजोर व्यक्ति।
हम तो अपने नायकों को एकदम अलग रूप में देखते हैं। स्रोत में एक बहुत पुराने रेडियो शो का जिक्र है, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड,
जो करीब 114 साल पुराना शो है।
जी, उसमें यीशु का किरदार निभाने वाले की आवाज बहुत भारी, एकदम सम्मोहक होती थी और पीछे बढ़िया ऑर्गन संगीत बजता था। हम अवचेतन रूप से यही चाहते हैं ना?
बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा नायक देखने और सुनने में भव्य लगे। लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी शक्ल इतनी बिगड़ी हुई थी कि लोग उसे देखकर अपना चेहरा छिपा लेते थे। वो सुंदर नहीं था।
ये बहुत ही दुखद है।
और यहीं पर डॉक्टर ऑज़वाल्ड एक भाषाई विवाद पर प्रकाश डालते हैं। अंग्रेजी अनुवादों में अक्सर एक शब्द आता है, स्प्रिंकल, यानी छिड़कना। लेकिन व्याकरण और मूल भाषा के अनुसार इसका सही अर्थ है स्टार्टल, यानी चौंकाना।
अच्छा।
हाँ, इस सेवक ने कई राष्ट्रों और उनके राजाओं को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दुनिया का उद्धार करता इतना बदसूरत और टूटा हुआ दिखेगा।
राजाओं के तो मुंह खुले रह गए होंगे, लेकिन अगर वो इतना कमजोर दिख रहा था तो लोगों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? इसका जवाब स्रोत में भेड़ों के एक बहुत ही सटीक रूपक में छिपा है।
जी, भेड़ों वाला हिस्सा बहुत गहरा है।
कहा गया है कि हम सभी भेड़ों की तरह भटक गए हैं। अब आमतौर पर हम भेड़ों को बेवकूफ मानते हैं, लेकिन डॉक्टर ऑज़वाल्ड बताते हैं कि भेड़ें बेवकूफ नहीं होती, बस उनका दिमाग एक ही दिशा में काम करता है।
मतलब वो सिंगल माइंडेड होती हैं।
बिल्कुल, वे बस अपने सामने घास के एक टुकड़े को देखती हैं, उसे खाती हैं, फिर अगले की तरफ बढ़ती हैं और भटक जाती हैं।
हाँ।
वे कभी सिर उठाकर नहीं देखती, और यही हमारी स्वार्थी फितरत है जिसे इनिक्विटी कहा गया है। हम बस अपने अगले फायदे के पीछे भागते हैं।
और स्रोत बताता है कि ईश्वर ने ये सारी स्वार्थी फितरत, उस भटकाव का पूरा बोझ उस सेवक पर डाल दिया।
और लोगों का रिएक्शन क्या था? उन्हें लगा कि उसे अपनी ही गलतियों की सजा मिल रही है।
हाँ, उन्होंने सोचा उसने खुद ही मुसीबत मोल ली होगी।
लेकिन उस सेवक ने क्या किया? यहाँ ऊन कतरने यानी शेयरिंग का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। डॉक्टर ऑज़वाल्ड एक बहुत ही हिंसक बकरे की कहानी सुनाते हैं
जो ऊन काटने वाले पर हमला करने वाला लग रहा था।
हाँ, लेकिन जैसे ही ऊन काटने वाले ने उसे पकड़ा और अपने सीने से लगाया, वो जानवर एकदम शांत हो गया। उसने बिल्कुल विरोध नहीं किया।
और उस सेवक ने भी बिल्कुल ऐसा ही मौन आत्मसमर्पण किया। उसने केवल अपना रास्ता ही नहीं छोड़ा, बल्कि अपने अधिकारों को, अपने हक को भी त्याग दिया। उसने मुंह तक नहीं खोला।
हम इंसान तो हर बात पर बहस करते हैं, ये मेरी गलती नहीं है।
हाँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया।
नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके कोई बच्चे नहीं हुए, जो उस समय की संस्कृति में इस बात का प्रतीक था कि आपका अस्तित्व ही मिट गया। और उसे अमीरों के साथ दफनाया गया।
हाँ, और प्राचीन समय में अमीरों के साथ दफनाया जाना सम्मान की बात नहीं थी। ये धोखे, हिंसा और भ्रष्ट धन का प्रतीक माना जाता था।
मतलब जिसने कभी कोई छल नहीं किया, उसे अपराधियों के बीच जगह मिली। ये सुनकर अजीब सी बेचैनी होती है, और यहीं से ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल पर पहुंचती है।
जी, और ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो धर्म विज्ञान का सबसे कठिन सवाल माना जा सकता है।
मैं श्लोक 53:10 की बात कर रही हूँ। ये श्लोक कहता है कि ईश्वर को उसे कुचलने में प्रसन्नता हुई।
ये बहुत विचलित करने वाला है।
हाँ, मतलब एक पिता अपने ही निर्दोष सेवक को इस तरह कुचले जाने पर प्रसन्न कैसे हो सकता है? ये कैसा ईश्वर है?
अगर हम इसे क्रूर शासक की खुशी के रूप में देखें तो ये बहुत भयानक लगेगा, लेकिन डॉक्टर ऑज़वाल्ड इसे एक कहानी से समझाते हैं, पुल के ऑपरेटर की कहानी, या द ब्रिज टेंडर।
वो कहानी सच में बहुत शक्तिशाली और दर्दनाक है।
जी।
एक पिता है जो रेलवे का पुल संचालित करता है। अचानक वो देखता है कि दूसरी तरफ से 300 यात्रियों से भरी एक ट्रेन आ रही है
और उसे तुरंत पुल को नीचे करना है।
हाँ, लेकिन तभी वो क्या देखता है कि उसके अपने ही छोटे बेटे का कोट पुल के गियर में फंस गया है। अब उस पिता के सामने दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला है।
बिल्कुल, या तो वो मशीन रोककर अपने बेटे को बचा ले
और उन 300 लोगों को ट्रेन के साथ नदी में गिरने दे, या फिर अपने कान बंद करके मशीन को चलने दे ताकि वो सैकड़ों लोग बच जाएं, भले ही उसका बेटा कुचला जाए।
एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्थिति है।
और वो पिता दूसरा विकल्प चुनता है।
डॉक्टर ऑज़वाल्ड इस कहानी को जोड़ते हुए समझाते हैं कि ईश्वर को उसे कुचलने में खुशी या ग्लैडनेस इसलिए नहीं मिली कि उसे दुख देने में मजा आ रहा था।
तो फिर किस बात की खुशी?
खुशी इस बात की थी क्योंकि उसे पता था कि इसके बदले में करोड़ों लोगों की जान बचेगी। वो संतुष्टि उस परिणाम की थी, ना कि उस क्रूर प्रक्रिया की।
समझ गई, ये बहुत गहरी बात है।
और यहाँ अनुवाद का एक बहुत बड़ा विवाद भी है। कुछ अनुवाद कहते हैं जब ईश्वर उसकी आत्मा को बलि बनाता है।
अच्छा, और सही अनुवाद क्या होना चाहिए?
मूल हिब्रू के करीब अनुवाद ये है, जब आप उसकी आत्मा को पाप बलि चढ़ाते हैं।
ओह, जब आप मतलब इंसान।
जी हाँ, धर्म विज्ञान अक्सर इस आप को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि इंसान खुद आगे बढ़कर इस बलिदान को स्वीकार करे। ये एक तरफा नहीं है,
मतलब हमारा हिस्सा भी है इसमें। ये बात तो एकदम बच्चे के जन्म के उदाहरण जैसी है जो श्रोत में दी गई है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
जैसे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत ज्यादा पीड़ा और दर्द से गुजरती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो सारी पीड़ा संतुष्टि में बदल जाती है।
ठीक वैसे ही उस सेवक ने अपने असीनों दुख के बाद लाखों बच्चों को देखा और वो संतुष्ट हुआ।
क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा का, इस सब का मतलब क्या है? हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सच्ची शक्ति क्या है, इसे लेकर हमारी सोच एकदम बदल जाती है।
हाँ, सच्ची शक्ति किसी इनक्रेडिबल हल्क की तरफ बलवान होने या दूसरों को डराने में नहीं है।
बिल्कुल नहीं। ईश्वर की सच्ची शक्ति दुनिया की सारी बुराई, सारे अन्याय और दर्द को अपने अंदर सोख लेने में है और बदले में केवल प्रेम वापस देने में है।
यही असली शक्ति है।
जी।
तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए सुनने वालों के लिए मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो खुद विचार कर सकें।
बताइए।
आज हमने देखा कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति ने दुनिया को जीतने के लिए खुद को पूरी तरह से निहत्था और कमजोर कर दिया।
जी।
तो जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने झगड़ों या विवादों में कमजोरी और आत्मसमर्पण की इस परिभाषा को अपना लें तो क्या होगा?
यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विचार है,
है ना? क्या बुराई का मुकाबला करने का सबसे असरदार तरीका उसे ताकत से हराना नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर सोख कर प्रेम में बदल देना है? इस पर विचार कीजिएगा।
बहुत ही सुंदर विचार है।
इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।